एक बहुत ही खास वीआईपी रूम की कल्पना करते हैं, मतलब एक ऐसा कमरा जो किसी महंगे क्लब या फाइव स्टार होटल का हिस्सा नहीं है।
जी बिल्कुल, ये कोई आम वीआईपी रूम नहीं है।
हाँ, ये एक ऐसी जगह है जो इतनी शक्तिशाली, इतनी रहस्यमयी और ऊर्जा से भरी हुई है कि वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है।
किसी को भी नहीं,
मतलब वहां काम करने वाले लोगों या दिन रात सफाई करने वालों तक को उस कमरे में झांकने की भी मनाही है। पूरी दुनिया की आबादी में से सिर्फ एक अकेला इंसान,
सिर्फ एक इंसान,
हाँ, वो भी पूरे साल में सिर्फ एक बार उस दरवाजे के पार कदम रख सकता है। और जब वो अंदर जाता है ना, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए दर्जनों बहुत ही जटिल नियमों का पालन करना पड़ता है।
और एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधे मौत।
बाप रे, एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। मतलब ये विचार ही अपने आप में बहुत डरावना है ना?
बिल्कुल। और देखिए, मजे की बात ये है कि ये कोई काल्पनिक कहानी या किसी आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये दरअसल उस प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक व्यवस्था का एकदम सटीक वर्णन है जिसने सदियों तक एक पूरी की पूरी सभ्यता की मानसिकता को आकार दिया था।
मतलब आज हम जिस विषय पर ये गहन चर्चा कर रहे हैं वो इसी से जुड़ा है।
जी हाँ, आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ के हिस्से का विश्लेषण कर रहे हैं। इसे ऐतिहासिक रूप से इब्रानियों के नाम पत्र कहा जाता है। हम इसके अध्याय 9 और 10 के उस हिस्से को गहराई से समझने वाले हैं जहां लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ईश्वरीय उपस्थिति तक पहुंचने के तरीके में एक ब्रह्मांडीय स्तर का एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है।
एक ऐसा बदलाव जिसने उस भयानक वीआईपी रूम के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए।
बिल्कुल सही कहा आपने, हमेशा के लिए।
ये सच में एक ऐसा विषय है जो बहुत गहरे दार्शनिक सवालों से जुड़ा है। मतलब हम इंसानों ने हमेशा ये महसूस किया है कि किसी सर्वोच्च सत्ता या परम ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते में कुछ अदृश्य दीवारें हैं।
हाँ, एक तरह की रुकावट हमेशा महसूस होती है,
जैसे कोई चीज हमें वहां तक पहुंचने से रोक रही हो। तो आज की ये चर्चा इस बात को खोलेगी कि कैसे उस प्राचीन लेखक ने ये तर्क दिया कि ये सदियों पुरानी बाधाएं अब महज एक भ्रम बन चुकी हैं।
और इसी समाधान को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भौतिक पाबंदी को समझना होगा
जो सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं थी, बल्कि
ईंट, पत्थर, लकड़ी और बहुत भारी पर्दों से बनी एक ठोस संरचना थी जिसे ऐतिहासिक रूप से लेवी पुरोहिताई व्यवस्था कहा जाता था।
वास्तुकला का ये पहलू सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर हम प्राचीन इसराइलियों के उस तंबू की संरचना को देखें तो वो कई परतों में बटा हुआ था।
जी, यह कोई खुला मैदान नहीं था जहां कोई भी आ जा सके।
हाँ, ये एक के बाद एक घेरों का निर्माण था। सबसे भारी हिस्सा, फिर पहला तंबू जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था, जहां रोजमर्रा के काम होते थे। दीवट जल रही है, मेज पर खास रोटियां रखी हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही भारी और मोटा पर्दा होता था, और उस पर्दे के पार जो जगह थी, मतलब सोने से मढ़ा हुआ एक संदूक जिसके ऊपर वो पंखों वाले प्राणी,
जिन्हें करूब कहा जाता था,
हाँ करूब, वो अपने पंखों से उस संदूक के ढक्कन को ढकते थे, और उसके अंदर वो तख्तियां, मन्ना नाम का वो पुराना भोजन और एक सूखी छड़ी जिसमें फूल खिलाए थे।
सच कहूं तो ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे
किसी हॉलीवुड फिल्म का खजाना हो जिसे छूने पर इंसान तुरंत भस्म हो जाए।
हाँ बिल्कुल, और उस समय के लोगों के लिए वो सच में ऐसा ही था। देखिए, ईश्वरीय उपस्थिति को एक ऐसी ऊर्जा माना जाता था जो पवित्र है लेकिन बहुत खतरनाक भी। वहां पहुंच के तीन बहुत ही कड़े स्तर थे। आम नागरिक केवल एक बाहरी सीमा तक आ सकते थे, उससे आगे जाने का मतलब था मौत।
बाप रे।
और जो साधारण याजक थे, जो पुजारी थे, वे केवल उस पहले तंबू तक जा सकते थे, और वो दूसरा पर्दा
वो सिर्फ महायाजक पार कर सकता था।
बिल्कुल, उसे पार करने का अधिकार सिर्फ महायाजक को था, और वो भी साल में महज एक बार। दरअसल ये पूरी संरचना दो तरफा बचाव के लिए थी।
दो तरफा बचाव मतलब कैसे?
मतलब भगवान की भस्म कर देने वाली पवित्रता से आम इंसानों को बचाना, और साथ ही आम इंसानों की अशुद्धता से उस पवित्र स्थान की रक्षा करना।
लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास नजर आता है।
कैसा विरोधाभास?
मतलब सोचिए ना, अगर उन पुजारियों का मुख्य काम लोगों को भगवान से जोड़ना था तो उन्होंने ये जुर्माने की बाड़ क्यों बना रखी थी? मुझे ये बात एक वाईफाई वाले उदाहरण की तरह लगती है।
वाईफाई? अच्छा, बताइए।
मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे तेज, सबसे बेहतरीन वाईफाई राउटर है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस राउटर को एक शीशे के बक्से में बंद कर दिया और उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब वहां से कोई सिग्नल बाहर आ ही नहीं रहा। अगर वो शक्ति वहां है तो लोग उससे जुड़ेंगे कैसे? ये पूरी संरचना तो समाधान कम और एक समस्या ज्यादा लगती है।
देखिए, ये वाईफाई और सीसे के बक्से वाली तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब इब्रानियों के पत्र का लेखक ठीक यही बात समझाना चाह रहा है।
अच्छा।
हाँ, वो कह रहा है कि ये पुरानी व्यवस्था दरअसल लोगों को भगवान के करीब नहीं ला रही थी, बल्कि वो तो ये याद दिला रही थी कि इंसान भगवान से कितना दूर है।
दूरियों को मिटाने की बजाय दूरियां बढ़ा रही थी।
बिल्कुल, ये हर दिन लोगों को उनकी अशुद्धता का एहसास कराती थी।
तो फिर एक आम इंसान इस भारी बोझ के साथ कैसे जीता था? मतलब जब वो कनेक्शन, वो वाईफाई इतना ब्लॉक था, तो लोग अपनी गलतियों का या पापों का प्रायश्चित कैसे करते थे?
इसी अशुद्धता से निपटने के लिए वो साल का एक विशेष दिन तय किया गया था।
वो प्रायश्चित का दिन?
हाँ, प्रायश्चित का दिन। यही वो इकलौता दिन था जब वो महायाजक उस सीसे के बक्से को, मतलब उस परम पवित्र स्थान के पर्दे को हटाकर अंदर जाता था। और इस अनुष्ठान की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। महायाजक पहले अपने खुद के पापों के लिए एक बैल की बलि देता था, फिर लोगों के पापों के लिए दो बकरों का इंतजाम किया जाता था।
वो बकरे?
हाँ, एक की बलि दी जाती थी और दूसरे बकरे के सिर पर हाथ रखकर प्रतीकात्मक रूप से पूरे समुदाय के पाप उस पर लाद दिए जाते थे और उसे दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था।
ये तो वो अजाज़ेल वाली बात हो गई।
जी बिल्कुल। और सबसे भयानक हिस्सा वो था जब बलि दिए गए जानवरों का खून लेकर महायाजक अंदर जाता था और उस खून को संदूक के ढक्कन पर छिड़कता था।
खून छिड़कने वाला ये हिस्सा मुझे हमेशा से थोड़ा परेशान करता है। मतलब आप एक पवित्र जगह को साफ करने के लिए वहाँ खून क्यों छिड़क रहे हैं?
ये सवाल बहुत लाजमी है।
आमतौर पर खून तो चीजों को गंदा करता है ना।
देखिए, आज के आधुनिक दिमाग को ये अजीब लग सकता है, लेकिन प्राचीन इजरायली मानसिकता में खून को जीवन का प्रतीक माना जाता था और पाप को महज एक बुरा विचार नहीं माना जाता था। पाप की एक भौतिक प्रदूषण जैसी प्रकृति मानी जाती थी। विद्वान जैकब मिलग्रोम ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है।
डोरियन ग्रे प्रभाव?
हाँ, डोरियन ग्रे प्रभाव।
वो ऑस्कर वाइल्ड वाले उपन्यास की तरह ना, जिसमें इंसान तो हमेशा जवान रहता है, लेकिन एक बंद कमरे में रखी उसकी तस्वीर में उसकी सारी बुराइयां और पाप भयानक रूप से दिखाई देने लगते हैं।
एकदम सटीक तुलना है ये। मिलग्रोम का कहना है कि प्राचीन समाज में माना जाता था कि जब भी कोई पाप करता है तो वो पाप हवा में उड़कर सीधे उस परम पवित्र स्थान में जाता है,
बाप रे,
और उस पवित्र संदूक पर एक अदृश्य दाग लगा देता है। पूरे साल भर लोगों के झूठ, धोखे, इन सब का प्रदूषण उस तंबू के अंदर जमा होता रहता था।
तो वो तंबू उस तस्वीर की तरह था जो समाज की सारी गंदगी सोख रहा था।
बिल्कुल। और अगर उसे साफ नहीं किया गया तो ईश्वरीय उपस्थिति वहां से चली जाएगी। इसलिए वो खून जो जीवन का प्रतीक था, उसे एक तरह के स्पिरिचुअल डिटर्जेंट या क्लीनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था,
ताकि उस जमा हुए प्रदूषण को धोया जा सके। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला नजरिया है। मतलब पाप महज एक भावना नहीं बल्कि एक जहरीला कचरा था।
जी हाँ।
लेकिन यहीं पर उस प्राचीन पत्र का लेखक एक बहुत ही तीखा सवाल उठाता है। वो कहता है कि ठीक है, आपने खून से उस तंबू को तो साफ कर दिया, बाहरी तौर पर सब कुछ शुद्ध हो गया, लेकिन उस इंसान के अंदर का क्या?
यही सबसे बड़ा मुद्दा था।
वो इंसान जिसने पाप किया था, उसका विवेक तो अभी भी अशुद्ध है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी को भयंकर पेट दर्द हो रहा हो और डॉक्टर कहे कि जाओ जाकर एक अच्छा सा गर्म पानी का शावर ले लो।
बहुत खूब, ये उदाहरण बहुत मजेदार है।
मतलब बाहर से नहाने से इंसान साफ तो हो जाएगा, खुशबू भी आएगी, लेकिन अंदर की बीमारी तो वैसी की वैसी है। क्या बाहरी पानी इंसान के अंदर को बदल सकता है?
ये शावर और पेट दर्द वाला लॉजिक इस ग्रंथ के मुख्य तर्क की धुरी है। देखिए, लेखक पर यूनानी दर्शन का गहरा प्रभाव था। वो बाहरी शरीर और भीतरी विवेक के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। वो तर्क देता है कि अगर वो पुरानी व्यवस्था सच में कारगर होती, अगर खून से इंसान का विवेक साफ हो जाता, तो उसे हर साल क्यों दोहराना पड़ता?
सही बात है, बार बार करना ही इस बात का सबूत है कि वो काम नहीं कर रहा था।
बिल्कुल, वो केवल सतह को साफ कर रहा था। वो लोगों को उस स्थिति तक नहीं ले जा पा रहा था जहां वे बिना किसी डर के भगवान के सामने खड़े हो सके। इसीलिए लेखक इस पूरी व्यवस्था को केवल एक दृष्टांत या परछाई कहता है,
एक मॉडल जो आने वाली एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। और यहीं से यह कहानी पृथ्वी के उस छोटे से तंबू से उठकर सीधे ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक स्तर पर चली जाती है।
जी, ये महज एक वास्तुकला का बदलाव नहीं बल्कि एक कॉस्मिक अपग्रेड था।
लेखक दावा करता है कि असली समाधान पृथ्वी के तंबू में हुआ ही नहीं।
हाँ, ये इस ग्रंथ का सबसे बड़ा मोड़ है। लेखक कहता है कि ईसा मसीह ने पृथ्वी के किसी तंबू में प्रवेश नहीं किया, वे एक ऐसे महान और सिद्ध तंबू में गए हैं जो इंसानों के हाथों का बना हुआ नहीं है।
मतलब वो इस भौतिक सृष्टि का हिस्सा ही नहीं है।
बिल्कुल, वो एक अदृश्य शाश्वत वास्तविकता है और यरूशलेम का मंदिर केवल उस असली चीज का एक धुंधला सा ब्लूप्रिंट था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह उस कॉस्मिक तंबू में जानवरों का खून लेकर नहीं जाते, वे बकरों या बछड़ों का खून नहीं ले जाते, वे अपना स्वयं का खून, अपना जीवन लेकर वहां प्रवेश करते हैं।
ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था जिसने उस समय की धार्मिक सोच को हिलाकर रख दिया। पुरानी व्यवस्था में हमेशा दो चीजें होती थीं, एक याजक जो बलि चढ़ाता है और एक जानवर जिसकी बलि चढ़ती है। लेकिन यहाँ मसीह एक ही समय में महायाजक भी हैं और परम बलिदान भी।
मध्यस्थ और भेंट दोनों एक ही हैं।
जी,
और ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसे हर साल दोहराना पड़े। इसे साबित करने के लिए लेखक भजन संहिता के अध्याय 110 का सहारा लेता है।
अरे हाँ, ये खड़े होने और बैठने वाला तर्क ये सच में बहुत ही शानदार है।
मतलब पुराने तंबू में पुजारियों के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी,
वो हमेशा खड़े रहते थे।
हाँ, क्योंकि उनका काम कभी खत्म ही नहीं होता था, हर सुबह हर साल वही अनुष्ठान। लेकिन मसीह के बारे में कहा गया है कि वे उस ब्रह्मांडीय तंबू में गए, अपना काम पूरा किया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए। बैठ जाना कोई छोटी बात नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि काम हमेशा के लिए पूरा हो चुका है, मिशन अकम्प्लिश्ड।
बिल्कुल सही, बैठना पूर्णता का और अधिकार का प्रतीक है, ये एक शाश्वत मुक्ति है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही गहरा दार्शनिक बिंदु उभरता है जिसपे हमें थोड़ा रुक के विचार करना चाहिए।
क्या?
हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का तंबू एक नकल था और स्वर्ग का तंबू असली है।
हाँ, और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है।
पूछिए।
अगर स्वर्ग का तंबू पहले से ही सिद्ध है, इंसानों के हाथों का बना नहीं है, बुराई से कोसों दूर है, तो भला उसे मसीह के खून से शुद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वर्ग को सफाई की क्या जरूरत है?
देखिए, ये सवाल बहुत से विचारकों को परेशान करता है, लेकिन इसका जवाब उसी डोरियन ग्रे प्रभाव में छिपा है।
अच्छा, कैसे?
लेखक का तर्क है कि मानवीय अशुद्धता और पाप का प्रभाव इतना विनाशकारी था कि वो केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा, उस प्रदूषण की पहुंच वैचारिक रूप से स्वर्ग के सिंहासन तक हो गई थी।
बाप रे, मतलब पाप का कॉस्मिक प्रभाव?
जी हाँ, वो एक याद दिलाने वाला दाग था कि इंसानों और ईश्वर का रिश्ता टूट चुका है। अगर पृथ्वी के उस तंबू को जानवरों के खून से साफ किया जा सकता था, तो उस असली शाश्वत तंबू को साफ करने के लिए किसी बहुत ही श्रेष्ठ चीज की आवश्यकता थी। और वो चीज थी एक निष्कलंक मानव का स्वेच्छा से दिया गया जीवन। मसीह के बलिदान ने स्वर्ग के उस स्थान से पाप की उस याद को ही हमेशा के लिए मिटा दिया, उस टूटे हुए रिश्ते के रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दिया।
ये तो सच में पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को फिर से जोड़ने जैसा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सफाई अभियान पे खत्म नहीं होती, इसका एक बहुत ही गहरा कानूनी पहलू भी है।
बिल्कुल, एक नई व्यवस्था।
हाँ, यहाँ हम इतिहास के पन्नों में पीछे जाते हैं, जब मूसा ने इसराइलियों के साथ एक पुरानी वाचा या समझौते की शुरुआत की थी।
वो एक बहुत ही नाटकीय पल था, जब मूसा ने उस पहले समझौते की शुरुआत की तो उसने बछड़ों का खून, पानी, लाल रंग की ऊन और जूफा नाम का एक पौधा लिया था। उसने खून को नियम की किताब पर और लोगों पर छिड़का था, ये उस कानूनी करार पर हस्ताक्षर करने जैसा था। लेकिन इब्रानियों का लेखक इस रस्म को लेता है और उसे एक बिल्कुल नए कानूनी सांचे में ढाल देता है।
और ये सब वो एक ग्रीक शब्द के बहुत ही चतुर उपयोग से करता है, वो शब्द है डाइथेके।
डाइथेके,
जी।
इस शब्द की खूबी ये है कि इसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला तो वही वाचा या कोई समझौता, लेकिन इसका एक दूसरा कानूनी अर्थ भी है, वसीयत या ट्रस्ट, जैसे कोई इंसान मरने से पहले अपनी संपत्ति किसी के नाम करता है।
और लेखक ने इसी दोहरे अर्थ को पकड़कर एक जबरदस्त कानूनी तर्क पेश किया है। वो कहता है कि दुनिया की किसी भी कानून में कोई भी वसीयत तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि उसे बनाने वाला जीवित है।
जब तक इंसान जिंदा है, वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है।
बिल्कुल, वसीयत केवल एक मृत्यु के बाद ही सक्रिय होती है।
अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक विशाल ट्रस्ट फंड की तरह है, जिसे खास शर्त पूरी होने तक लॉक करके रखा गया है, और वो शर्त है बनाने वाले की मौत।
हाँ।
लेकिन यहाँ एक कानूनी पेंच था। वो ट्रस्ट फंड परमेश्वर ने बनाया था, और परमेश्वर की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती,
वो तो शाश्वत है। तो वो वसीयत, वो अनंत जीवन की विरासत इंसानों को मिलती कैसे? और यहीं पर वो ऐतिहासिक लीगल लूप होल सामने आता है। मसीह की मृत्यु को ही वो मृत्यु माना गया जिसने इस पूरी कानूनी वसीयत को एक्टिवेट कर दिया।
ये तर्क बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था की कमियों और नई की पूर्णता को एक झटके में समझा देता है। मसीह की मृत्यु केवल सफाई नहीं थी, वो उस नई वसीयत को लागू करने की अंतिम कानूनी मुहर थी।
मुझे इस व्याख्या में एक और दिलचस्प बात नजर आई। जब मूसा ने खून छिड़का था तो उसने कहा था, ये वाचा का खून है। लेकिन जब लेखक इसका जिक्र करता है तो वो लिखता है, ये नई वाचा का खून है। और जो लोग इतिहास जानते हैं वो पहचान लेंगे कि ये वही वाक्य है जो ईसा मसीह ने लास्ट सपर के दौरान कहा था। ये जानबूझकर किया गया बदलाव था ना?
इसमें कोई शक नहीं है। ये लेखक की वैचारिक प्रतिभा को दर्शाता है। वो मसीह के अंतिम शब्दों को उन प्राचीन अनुष्ठानों के साथ इतनी बारीकी से बुन रहा है कि सब कुछ एक साथ जुड़ जाए।
बिल्कुल,
पल में नहीं बल्कि युगों के अंत में हुआ, ताकि एक नए युग की शुरुआत हो सके।
लेकिन इन सब के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। ये सारी ब्रह्मांडीय वास्तुकला, खून के अनुष्ठान, कानूनी पेंच, इन सब का उस समय के आम लोगों के लिए क्या मतलब था, और आज के दौर में इसका क्या अर्थ है? मतलब सो व्हाट?
इस सो व्हाट का जवाब उद्धार की अवधारणा में छिपा है। लेखक कहता है कि जिस तरह हर मनुष्य एक बार मरता है और फिर न्याय का सामना करता है, उसी तरह मसीह दूसरी बार प्रकट होंगे। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य पाप का समाधान करना नहीं होगा। इस बार वे उन लोगों के पूर्ण उद्धार के लिए आएंगे जो अबेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि कई अन्य प्राचीन लेखों में ऐसा लगता है कि ये उद्धार अतीत की घटना है जो हो चुकी है, लेकिन यहाँ इसका ढांचा भविष्य पर टिका है।
और यही इस पत्र की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खूबी है। देखिए, ये पत्र किन लोगों के लिए लिखा जा रहा था? ये वो लोग थे जिन्हें सताया जा रहा था। वे थक चुके थे, निराश थे,
अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहते होंगे।
बिल्कुल। तो लेखक उन्हें बता रहा है कि जो कुछ मसीह ने किया है वो गारंटी है, लेकिन उस वसीयत का जो सबसे बड़ा इनाम है वो अभी भविष्य में सामने आना बाकी है। यह उन्हें धीरज बंधाता है कि वर्तमान का ये दुख उस बड़ी तस्वीर के सामने कुछ भी नहीं है।
यानी ये पूरा तर्क महज कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं था, इसका उद्देश्य एक टूट रहे समुदाय को ढांढस बंधाना था।
जी हाँ, उन्हें उम्मीद देना था।
अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें और वापस उसी वीआईपी रूम पर जाएं, तो उस लेखक ने यह साहस दिखाया कि वो अपने समय की सबसे पवित्र इमारत को महज एक दृष्टांत या परछाई कह सके।
एक मॉडल, असली सत्य नहीं।
ये एक ऐसा विचार है जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे आधुनिक जीवन में ऐसी कौन सी अभौतिक संस्थाएं हैं, ऐसे कौन से नियम या दीवाएं हैं जिन्हें हम अंतिम सत्य मान बैठे हैं।
बिल्कुल।
क्या ये संभव नहीं है कि जिन चीजों को हम अंतिम सत्य मान रहे हैं वे दरअसल किसी बहुत बड़ी, अनदेखी और असीम वास्तविकता की महज एक धुंधली सी परछाई हों?
ये सच में एक बहुत गहरा विचार है।
जरा इस पर विचार कीजिएगा, और इसी गहरे सवाल के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सतह से परे जाकर सवाल पूछते रहिए।